समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार सुप्रभात श्रोताओं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और उठता है, और इसी तरह हमारे जीवन में भी कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव अचानक नहीं आता। लेकिन अगर हम सकारात्मक होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें तो सूरज की तरह हमारा चमकना भी संभव है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। समय है 7:30। आज की नई सुबह में हम अब तक के मुख्य समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Divya, good morning and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashwani network. We bring for you our ever-exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein over the next half hour, we will bring you the latest in national and international news, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is the 24th of October. But we'll begin with the headlines first.
आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भीषण चक्रवाती तूफान दाना आज देर रात या कल तड़के तक ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों भितरकनिका और धामरा के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक जिले चक्रवात से सबसे बुरी तरह प्रभावित होंगे। वहीं चक्रवात दाना राज्य से सटे तटीय और अन्य जिलों को भी प्रभावित करेगा। ओडिशा सरकार ने चक्रवात दाना से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चक्रवात दाना के मद्देनजर पूर्वी तट पर रेड अलर्ट के बीच रेल सेवाएं तुरंत बहाल करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 9 समर्पित वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे। क्षेत्रीय रेलवे की तैयारियों की समीक्षा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री वैष्णव ने रेल यातायात में न्यूनतम बाधा और अधिकतम तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
Prime Minister Narendra Modi has arrived in New Delhi after attending the BRICS summit in Kazan, Russia. During his visit, PM Modi held bilateral meetings with Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and the newly elected Iranian President Masoud Pezeshkian on the sidelines of the summit. Mr. Modi also held bilateral meetings with the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed bin Nahyan, President of the United Arab Emirates. In his meeting with the Chinese President, Prime Minister Modi underscored the importance of properly handling differences and disputes between India and China and not allowing them to disturb peace and tranquility. During the meeting, the two leaders affirmed that stable, predictable and amicable bilateral relations between India and China will have a positive impact on regional and global peace and prosperity. Briefing media about the meeting in Kazan, Foreign Secretary Vikram Misri said this meeting happened closed on the heels of the disengagement and patrolling agreement and the resolution of issues that had arisen in the India-China border areas in 2020. Earlier, the Prime Minister asked BRICS nations to unite and cooperate strongly to deal with terrorism and terror financing. Addressing the BRICS Leaders Summit, Mr. Modi said BRICS represents 40% of the world's humanity and around 30% of the economy, and the grouping has achieved several milestones in the last two decades.
जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली आ रहे हैं। श्री शोल्ज 7वीं अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज कल अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अंतर सरकारी परामर्श समूह सरकारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं।
Union Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan has announced that the ministry is inviting applications for new private FM radio stations in 11 cities in Tamil Nadu. These cities currently do not have private FM stations. During an interaction on ongoing FM radio auction with various chambers of commerce in Chennai, Union Minister highlighted the achievements of the government in its first 100 days after Prime Minister Narendra Modi's third term. He noted that 15 lakh crore rupees has been allocated for various development projects and 1,500 old laws that hindered business growth have been removed. The minister also mentioned that 3 lakh crore rupees have been allocated for infrastructure development. He emphasized that several welfare schemes have been launched to promote the overall development of society, which aims to make India a Vikasit Bharat by 2047. Regarding the FM radio expansion, Dr. Murugan said auctions for 234 new private FM stations across the country began on the 14th of October, with 11 cities in Tamil Nadu set to benefit. Joint Secretary Sanjeev Shankar revealed that cities like Koonoor, Dindigul, Karaikudi, Karur and Thanjavur, among others, will soon have private FM channels, with the bidding process for 3 channels per city already underway. The last date to apply is November 18, 2024.
Raksha Mantri Rajnath Singh aaj Nayi Delhi mein antarashtriya seminar Chanakya Raksha Samvad ke dusre sanskaran ka udghatan karenge. Raksha Mantri is dauran Bharatiya Sena ki Harit Pahal aur Artificial Intelligence ke digitalikaran ke pehle charan ka bhi udghatan karenge.
In Assam, World Gibbon Day is being celebrated in Tinsukia district. The two-day event is being organized by the state government in association with various civil society organizations at Barekudi village. Our correspondent reports that recently Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat highlighted the unique relationship between the local people and the Hulok Gibbons at Barekudi village. Barekudi village sought to limelight for the conservation of Hulok Gibbons as well as for point of view of tourism. Various events, including seminars, awareness meetings, competitions are being organized as a part of the two-day event that began yesterday.
America ke videsh mantri Antony Blinken ne kal Lebanon aur Gaza mein jari sangharsh par charcha karne ke liye Saudi Arab ke Crown Prince Mohammed bin Salman se mulaqat ki. Is uchchastariya baithak mein dono kshetron ke sainya abhiyanon aur मानवीय संकट को समाप्त करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की भी समीक्षा की और परस्पर हितों के विभिन्न क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की. एक वक्तव्य में अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि ब्लिंकन ने गजा संघर्ष समाप्त करने की तत्परता, बंधकों की रिहाई सुरक्षित करने और हमास के नियंत्रण के बिना गजा की व्यवस्था के पुनर्गठन पर बल दिया.
Now on to some sports news. In tennis, the Indo-Australian duo of Rohan Bopanna and Matthew Ebden will face the British pair of Neil Skupski and New Zealand's Michael Venus in the quarterfinal of the men's doubles at the Vienna Open today. The match is scheduled to start at 4:50 p.m. IST. Earlier, the second-seeded pair defeated Dutch player Robin Haas and German star Alexander Zverev with a score of 2-6, 7-5, 10-5 in the round of 16.
और खेल खबरों में ही आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा टेस्ट पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जो 1988 के बाद भारत में न्यूजीलैंड की पहली टेस्ट जीत थी. और अब बात करते हैं मेट्रो न्यूज की.
जी
तो प्रमोद, हम चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से क्या क्या समाचार हैं?
जी पहले मैं आपको ले जाऊंगा चेन्नई. इन एन एफर्ट टू मेक द लास्ट माइल कम्यूटेशन मोर सेफर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल वुमेन for partially funding the pink auto rickshaws to be run by women. According to a release by Social Welfare Department, the government will provide 1 lakh grant to 250 women each residing in Chennai to buy CNG hybrid auto rickshaws. Rest of the amount will be provided as loan. Women in the age group of 25 to 45 can apply for the scheme, and priority would be given to widows and destitute women. The applicants should be residents of Chennai and should have passed the SSLC examination and possess a driving license. Pink autos would be functional in railway stations and bus stands in Chennai. Riding on the astounding popularity of the swanky Vande Bharat trains, Indian Railways is all set to commence the sleeper version of Vande Bharat very soon. Addressing the press in an event that showcased first prototype of AC first, second and three tier sleeper coaches of Vande Bharat sleeper train, ICF General Manager U. Subba Rao said the sleeper version will complete the trials and requisite checks by January 2025. The two-month testing protocol started on the 15th of November is expected to conclude by the 15th of Jan 2025. Of the 16 coaches in the rake, one will be the first-class AC coach with 24 berths, four coaches will be AC two-tier with 188 berths each, while 11 will be AC three-tier coaches with 611 berths cumulatively. Altogether, each train will carry 823 passengers.
और अब आज सवेरे में वक्त है दिल्ली चलने का. तो भारत की लग्जरी रेल पैलेस ऑन व्हील्स बुधवार को दिल्ली से अपनी 7 दिन की यात्रा पर रवाना हो गई है. ये रेल यात्रियों को यूनेस्को द्वारा प्रमाणित 8 विश्व धरोहरों की सैर कराएगी, जिसमें ताजमहल भी शामिल है. 7 दिनों में ये रेल जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जैसलमेर होते हुए आगरा जाएगी. इस दौरान यात्रियों को भव्य किले, जंगल सफारी और मनमोहक लाइट एंड साउंड कार्यक्रम दिखाए जाएंगे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के संबंध में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर त्योहारों से पहले दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाने का आग्रह किया है. इसके अलावा उन्होंने सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाने के लिए भी कहा है. श्री राय ने कहा है कि वायु गुणवत्ता का स्तर लगातार खराब हो रहा है, पराली जलने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. इन सभी विषयों को लेकर उन्होंने श्री यादव को पत्र लिखा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी ग्रेप 2 के मद्देनजर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने शहर में पार्किंग शुल्क को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. ये शुल्क एनडीएमसी द्वारा संचालित सभी पार्किंग स्थलों पर लागू होगा. एनडीएमसी ने कहा है कि बढ़ाया हुआ शुल्क ग्रेप 2 के जारी रहने तक लागू रहेगा. हालांकि मासिक पासधारकों पर यह शुल्क लागू नहीं होगा. शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में बस्ता मुक्त दिवस लागू करने के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं. निर्देशों के तहत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को एक महीने में 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल आने के लिए कहा है. शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि बस्ता मुक्त दिवस के दौरान स्कूल छात्रों को ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों, शिल्प केंद्रों, पर्यटन स्थलों और कई अन्य स्थानों पर ले जा सकते हैं. शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत ये निर्देश जारी किए हैं. और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी 11 जिलों में 70 मोबाइल वैन तैनात की गई हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को मतदान प्रक्रिया और मशीनों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा रहा है.
Moving on to Bengaluru, the director of the Central Food Technology Research Institute in Mysuru, Sridevi Annapurna Singh, has said that they are now working on artificial intelligence or AI-based technologies in the areas of food processing, 3D printing, personalized nutrition and fortified food. Speaking at the Silver Jubilee Foundation Day event, she said that the 74-year-long journey of the Food Research Institute since 1959 has been productive, with many outcomes in the food research sector. She informed that the institute has developed over 1,000 technologies for the food industries. Starting from Amul baby food developed by it, the institute has also transferred technologies for the production of para-boiling rice, Mysuru atta, nutraceuticals and spirulina chickies. It has developed several food processing machines such as leaf cup making machine, papad press, maize mill system, versatile dal mill, rice bran stabilizer, dosha, idli, chapati and vada making machines, ragi mudde making machines, among others. It has developed pre-processing, manufacturing and analytical equipments for the development of biodegradable cutlery and tableware.
और प्रमोद, अब बात करते हैं मुंबई समाचार की. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपने 13 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें नासिक पश्चिम से दिनकर पाटिल, वडाला से स्नेहल सुधीर जाधव और ओवला माजीवाड़ा सीट से संदीप पचांगे को मैदान में उतारा गया है. इससे पहले मनसे ने 45 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी. पार्टी ने अब तक 58 उम्मीदवारों की घोषणा की है। सभी सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। मुंबई एशियाटिक सोसाइटी का मुंबई रिसर्च सेंटर अर्देशिर ईरानी को जानना शीर्षक पर एक टॉक शो आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम 8 नवंबर 2024 को शाम 4:30 बजे दरबार हॉल में आयोजित किया जाएगा। अर्देशिर ईरानी ने 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई थी। उनके इस फैसले ने दूसरों को प्रेरित किया, जिससे हिन्दुस्तान में बोलती फिल्मों के निर्माण का दौर शुरू हुआ। मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अमित हिसाम सिंह कुमार के रूप में हुई है। अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान अपराध में उसकी भूमिका निभाने सामने आने के बाद में उसे बुधवार को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। श्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को बांद्रा में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि मुख्य शूटर और 2 साजिशकर्ता अभी भी फरार हैं। पश्चिम रेलवे का रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए और यात्रियों के सामान की चोरी को रोकने के लिए चुनिंदा ट्रेनों में 15 मेरी सहेली टीमों को तैनात किया है और अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की प्रभावी सुरक्षा के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 11 ई मेरी सहेली टीमें शुरू की हैं। और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति को ब्याज दरों को कम करने के लिए सतर्क रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि भारत मुद्रास्फीति के एक और दौर का जोखिम नहीं उठा सकता। इस महीने की शुरुआत में आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक के विवरण के अनुसार श्री दास ने कहा कि सबसे अच्छा तरीका लचीला रहना और मुद्रास्फीति के लक्ष्य के साथ स्थायी रूप से संरेखित होने के और सबूतों की प्रतीक्षा करना होगा। मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रुख को न्यूट्रल रखते हुए लगातार 10वीं नीति बैठक के लिए रेपो दर को बिना बदलाव के 6.50% पर रखा है।
मूविंग ऑन टू हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा हैज एम्फसाइज्ड द पिविटल रोल दैट द वाइस चांसलर्स हैव टू प्ले इन स्टीयरिंग द फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन इन द स्टेट। Calling them the captains of the ship, the governor directed them to ensure that their universities focus on providing quality education and fostering innovative research. The governor held an interactive session yesterday with the 9 newly appointed vice chancellors of various universities across the state. An official communique said the governor informed the vice chancellors that he will hold quarterly interactions with them to assess the academic progress and achievements of their respective universities. This initiative is aimed at promoting continuous improvement and ensuring accountability in the higher education sector. The chairman and vice chairman of the Telangana State Council for Higher Education also attended the meeting.
और अब मेट्रो न्यूज में चलते हैं कोलकाता। चक्रवात दाना के कारण पूर्वी रेलवे के सियालदा और हावड़ा डिवीजनों ने भी हेल्प डेस्क नंबर शुरू कर दिए हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मछुआरों को 25 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तटरक्षक बल भी तटीय इलाकों में लोगों को चेतावनी दे रहा है। सरकार ने किसानों को धान की फसल काटने और खेतों में लगी सब्जियों और फलों पर नजर रखने की सलाह दी है। और आज सवेरे में अब बात महानगरों के मौसम की।
Yeah, we'll start with Chennai. Chennai is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and the maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई में आमतौर पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। और इससे पहले ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है यूनाइटेड नेशंस डे और इस दिन संगठन के लक्ष्यों और चर्चाओं के बारे में बैठकें और चर्चाएं की जाती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय स्कूल संयुक्त राष्ट्र दिवस पर अपने छात्र समूह में विविधता का जश्न मनाते हैं। ये दिन सभी को अपने साझा एजेंडे को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों की पुनः पुष्टि करने का अवसर देता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व में शांति बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को युद्ध की बुराइयों से बचाने के उद्देश्य से की गई थी।
That's right. In 1505 today, which is the 24th of October, Don Francis de Almeida of Portugal arrived at Cochin as Viceroy of India.
और 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। शहर का नाम तालाब अमृत सरोवर के नाम पर रखा गया। और जेसुइट पादरी एस जे थॉमस भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे। वो पुर्तगाली नौका से गोवा पहुंचे।
In 1605, Jahangir became the fourth emperor of the Mughal Empire at Agra. And in 1657, Kalyan and Bhiwandi came under the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj. And 1851, the first official telegraph line was opened between Calcutta and Diamond Harbour, spanning 33.8 kilometres. And on the same day, 24th of October, 1856, Veer Narayan Singh, the freedom fighter, was arrested by the British government at Sambalpur for distributing grains from the warehouse to the people. He was sent to jail at Raipur. And in 1934, father of the nation, Mahatma Gandhi, quit the Indian National Congress in struggle over tactics.
और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के एक महीने बाद ही विश्व में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 1946 में रॉकेट द्वारा पहली बार धरती का अंतरिक्ष से चित्र लिया गया। 1947 में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमला किया और 1948 में बर्नार्ड बारूक ने सीनेट युद्ध की जांच समिति के समक्ष एक भाषण में पहली बार शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया।
On the 24th of October 1975, bounded labor system was abolished by an ordinance. In 1984, the first metro train, underground train in India, started between Esplanade and Bhawanipur in Calcutta City. And in 1995, on this day, a total eclipse of the sun witnessed from India to Vietnam.
और 2000 में दक्षिण कोरिया द्वारा लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण न करने की घोषणा की गई। 2001 में नासा के 2001 मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया। और 2004 में ब्राजील ने अंतरिक्ष में पहला सफल रॉकेट परीक्षण किया। और 2005 में न्यूजीलैंड भारत नया हवाई स्पेस हवाई सेवा समझौता करने पर सहमत हुआ। और अब बात करते हैं आज सवेरे के आखिरी सेगमेंट की, जिसमें हम उन विशिष्ट व्यक्तित्व को याद करते हैं जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की, जिनका आज जन्मदिन है। कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का जन्म 24 अक्टूबर 1940 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। वे भौतिकविद के रूप में इसरो के अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव रह चुके हैं। डॉ के कस्तूरी रंगन ने 27 अगस्त 2003 में पद छोड़ने से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में 9 वर्षों से अधिक समय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन किया। इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉ कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल की, जिनमें भारत के प्रतिष्ठित प्रक्षेपण यान ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और अभी हाल ही में अत्यधिक महत्वपूर्ण GSLV का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण शामिल है। डॉ कस्तूरी रंगन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और उन्होंने अंतरिक्ष उपयोग के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 200 से अधिक आलेख प्रकाशित किए और 6 पुस्तकों को संपादित किया।
दिव्या, अगर मैं आपको बोलूं कि आज प्रबोध चंद्र डे का डेथ एनिवर्सरी है, तो क्या आप समझ पाएंगे कि कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं?
नहीं, मैं
जी वेल मन्ना डे सुना आपने?
जी बिल्कुल
जी, उनका आज डेथ एनिवर्सरी। वाज अ रेनाउंड इंडियन प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड म्यूजिशियन। ही हैड अ क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड बीइंग पार्ट ऑफ द भिंडी बाजार घराना एंड रिसीव ट्रेनिंग अंडर उस्ताद अमन अली खां। Manna Day is widely recognized as one of the most versatile and celebrated vocalists in the Hindi film industry and is often acknowledged for his significant contributions to integrating Indian classical music into Hindi commercial cinema. इनके बारे में कहा जाता है कि रफी इनको सुनते थे
जी जी हाँ। जी और उन्होंने अपने 5 दशक के करियर में लगभग 3500 गीत गाए हैं आज भी मतलब गीतों का भंडार है अगर रफी मतलब अगर मन्ना डे जी को कहा जाए तो और उन्हें भारत सरकार ने इसीलिए पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा था
एग्जैक्टली एज अ म्यूजिशियन या श्योर लेट्स लिसन टू हिज मेडली
मस्ती भरा है समा हम तुम हैं दोनों यहाँ आंखों में आ जा दिल में समा जा घूमे तमी आसमां
मस्ती भरा है समा हम तुम हैं दोनों यहाँ आंखों में आ जा दिल में समा जा घूमे तमी आसमां
मस्ती भरा है समा हमारी जमेगा कैसे जानी हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी
तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी
जोड़े हमारे
Today is also the death anniversary of a famous Indian Urdu novelist, short story writer, liberal humanist and filmmaker. Her name was Ismat Chughtai. She died on this day in 1991. Beginning in the 1930s, she wrote extensively on themes including female sexuality and femininity, middle class gentility and class conflict, often from a Marxist perspective. With a style characterized by literary realism, Chughtai established herself as a significant voice in the Urdu literature of the 20th century. And in 1976, she was awarded the Padma Shri by the Government of India. Garam Hawa, one of her most famous stories, won her the Filmfare Award for Best Story. We have a dialogue from that film.
Ja, beta. Ab main tumhe nahi rokunga. Insaan kab tak akela jee sakta hai?
Sikandar.
Are, are, chote miya, tum kahan ko ja rahe ho?
Main bhi akeli zindagi ki ghutan se tang aa gaya.
और आज ही ठुमरी की रानी भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी की पुण्यतिथि है उनका ताल्लुक बनारस घराने से था गायकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री और वर्ष 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया गिरिजा देवी संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी सम्मानित की जा चुकी हैं। 1949 में आकाशवाणी से अपने गायन का प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने कई संगीत सम्मेलनों में अपना गायन प्रस्तुत किया आइए सुनते हैं उनकी
Today is also the birth anniversary of Rasipuram Krishnaswamy Lakshman, better known as R.K. Lakshman. He was an Indian cartoonist, illustrator and humorist.
और अपने कार्टून के जरिए समाज की नब्ज टटोलते कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की आज जयंती है उन्होंने अपने कार्टून के जरिए आम आदमी के जीवन की मायूसी अंधेरे उजाले खुशी और गम सभी को शब्दों और रेखाओं की मदद से समाज के सामने रखा टनल टू टाइम द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज द एलोक्वेंट ब्रश द मैसेंजर होटल रिवियरा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया उनकी कुछ रचनाएं हैं भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया और इसके अलावा उन्हें रेमन मैगेसेसे पुरस्कार वी टी गोयन का पुरस्कार आदि भी मिला और इसके साथ ही श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का तो मुझे और वी सी प्रमोद को दीजिए इजाजत नमस्कार